ये भाई पिंडाल के आखिर में क्यों खड़े हैं सब? कोई मशवरा कर रहे हैं आप? जरा आ जाओ, करीब आ जाओ, ये मजमा जुड़ने वाली जमात है। आ जाओ, मजमा जुड़ गए, आप भी अंदर आ जाओ, नमाज बाकी। अच्छा, किनारे पर पड़ हमारे मजमे जोड़ने वाली जमात बनाइए, इसमें है साथी बैठे मजमा जोड़ने वाले। आप मजमा जोड़ने में और कौन है मजमा जोड़ने में? हैं? देखो बाहर जितने लोग खड़े हैं इनको जोड़ के ले आओ, और कौन? एक दो साथी चले जाओ, बाहर जितने खड़े हैं सबको ले अंदर, मोहब्बत प्यार से सबको अंदर बुला लो। है जिनकी नमाज बाकी है किनारे पर नमाज पढ़ते, जो अभी आए हैं दूर का सफर कर। हर एक आदमी अपने आगे की जगह को पूर कर ले, जगह खाली न छोड़े, वरना शैतान वहां बैठे।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. محترم بھائیو دوستو، اب تعالی شانہ نے مختصر سی دنیا کی زندگی دے رکھی ہے، تھوڑی سی عمر ہے ہماری، 40, 50, 60, 70. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس امت کی عمریں عموماً 60-70 ہوگی، 70 کے اوپر نکلنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، 70 کے اوپر نکلنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ ہمارے یہاں لوگ ظرافت میں میزان کہتے ہیں 70 کے اوپر کے والوں کو، 71, 72, 73. بولے یہ بونس پر چل رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ بونس مل رہا ہے، ورنہ حضور نے تو طے کیا ہے کہ 70 تھوڑے لوگ ہوں گے جن کو اوپر ملے گی۔ اللہ نے تھوڑی سی زندگی دے رکھی اور تعالی شانہو نے اس زندگی کے بعد ایک زندگی اور رکھی ہے, وہ برزخ کی زندگی ہے, قبر کی زندگی ہے. کہ اس زندگی میں جو جاتا ہے کوئی آتا نہیں, وہاں جو چلا جاتا ہے کوئی واپس آتا ہے؟ آج تک کسی قبرستان سے کوئی اٹھ کر آیا؟ بولو, آج تک کوئی اٹھ کر نہیں آیا. تو ہم بھی چلے جائیں گے, ہم بھی اٹھ کر واپس نہیں آئیں گے. یہ برزخ کی زندگی کتنی لمبی ہے کسی کو معلوم نہیں. لیکن ایک بات اللہ نے طے کر کے رکھی ہے کہ جب قیامت کا دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمام اولین آخرین تمام انسانوں کو پھر دوبارہ کیا کر دے گا؟ اللہ اپنی قدرت سے جمع کر دے گا. اللہ کیا کرے گا بولو؟ جمع کر دے گا, سب کو جمع کر دے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا آخرت, جس پر ہمارا ایمان ہے, یقین ہے. جس پر ہمارا کیا ہے بولو؟ ایمان ہے, یقین ہے. والبعث بعد الموت, بچپن میں جب پڑھتے تھے مولوی صاحب کے پاس تو وہ ایمان مجمل سکھاتے تھے, ایمان مفصل کے کلمات یاد کراتے تھے. اس میں بھی آواز ہوتی تھی کہ میں اللہ پر ایمان لیا ہے, اس کی ذات پر, اس کے صفات پر, اس کے فرشتوں پر, اس کے پیغمبروں پر, اس کی کتابوں پر, اور تقدیر کی اچھائی پر, تقدیر کی برائی پر, اور مرنے کے بعد کی زندگی پر. والبعث بعد الموت, اور وہ زندگی جو موت کے بعد ہوگی, وہ ایک الگ زندگی آخرت کی, ہمیشہ کی زندگی. وہ زندگی اس میں حق تعالی شانہ انسانوں کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے, تقسیم کر دیں گے. سارے انسان, کالے گورے, عرب عجم, تاجر کسان, شہری دیہاتی, پڑھے لکھے ان پڑھ, سب کو اللہ کیا کر دے گا؟ دو حصوں میں تقسیم کر دے گا. چاچا اس کو بند کر دو, بند کر دو, آپ کی طرف سب کی توجہ جا رہی ہے, اس کو بند کر دو. اللہ سب کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا. ایک حصہ جنت کی طرف جائے گا اور ایک حصہ دوزخ کی طرف جائے گا. جو جہاں جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جائے گا. جو جائے گا کس کے لیے جائے گا بولو؟ پھر وہاں ختم نہیں ہوگا, وہاں دنیا ختم ہو جائے گی, برزخ ختم ہو جائے گی, لیکن آخرت ختم نہیں ہوگی. آخرت ختم نہیں ہوگی. وہاں اللہ تعالیٰ جس کو جنت دے دے گا تو ہمیشہ کی راحتوں میں جاؤ, راحت ہی راحت. اسے صبح اٹھ کر نہ کھانے کا ٹینشن, نہ پینے کا ٹینشن, نہ کھیت کی کوئی فکر, نہ کاروبار کی کوئی فکر, نوکری کی کوئی فکر, کوئی فکر نہیں. ہاں, اور وہاں کوئی آپ سے یہ بھی کہے گا چلو پانچ وقت کی نماز پڑھو, کہے گا وہاں کہاں نماز نہیں ہوگی جنت میں, نماز نہیں ہوگی. کوئی آپ سے روزے نہیں رکھوائے گا, کوئی ہم سے روزے نہیں رکھوائے گا, کوئی ہم سے کیا ہے نماز نہیں پڑھوائے گا. اوہ, وہ ہم سب خربوں پتی ہوں گے, لکھ پتی, کروڑ پتی نہیں, خرب پتی ہوں گے, خرب پتی. لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آئے گا کہ تمہارے پاس جنت میں بہت مال ہے, زکات نکالو. وہاں زکات نکالنے کا حکم بھی نہیں آئے گا. وہاں کیا کرنا ہے؟ کھا پی کے ٹیسٹ کرنے کا ہے, کھا پی کے کیا کرنے کا بولو؟ ایش کرنے کا. کہ جنت والے اپنے اپنے مشغلوں میں مزے کے ساتھ ہوں گے. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا اسکول کے ویکیشن کا زمانہ آتا ہے, دو مہینے کا اسکول کا ویکیشن. تو عام دنوں میں بچے کیا ہوتے ہیں, دس مہینے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, اسکول مدرسہ, اسکول مدرسہ, اسکول مدرسہ, اسکول نہیں تو مدرسہ, مدرسہ نہیں تو اسکول. لیکن ویکیشن میں آپ نے سب نے دیکھا محلے کے اندر کہ ساری جو بچہ گیم ہوتی ہے نا, ہے نا, یا چلڈرن پارٹی, یہ پورا محلہ سر پر لے لیتی ہے. کیا کرتے ہیں؟ صبح ہوتی ان کو کھیل سوکھتا ہے. صبح اٹھتے ہی کیا ہوتا ہے؟
इन्हें खेल, हर रोज नया नया खेल, इन्हें इससे कोई कोई मतलब नहीं है कि अब्बा पैसे कैसे कमाते हैं, अब्बा कैसे लाते हैं, घर कैसे चलता है, मम्मी क्या मेहनत करती है, मेरी आपा क्या मेहनत करती है, इन तमाम घर के अंदर के हालात से इसको कोई फिक्र होती है? वो वक्त पर खा लेता है, वक्त पर खेल लेता है, वक्त पर सो जाता है। ऐसे अल्लाह ताला जन्नत वालों को हमेशा के लिए क्या करेगा बोलो, हर रोज इनके लिए नया नया मशगला होगा। जन्नती, जन्नत वाले अपने अपने मशगलों में मजे के साथ, और दोजख वाले इतने परेशानी में होंगे जिनकी परेशानी की कोई इंतहा नहीं। उलमा ने लिखा है कि दुनिया में, दुनिया बनने से लेकर अब तक, भाई ध्यान से सुनो, देखो इधर उधर ना देखो, बहुत ध्यान से सुनो, साल में एक दो मरतबा, साल में एक आध मरतबा इस तरह जुड़वा होता है ना, ध्यान अजमत के साथ सुने, और जो बाहर से आवे वो अंदर नमाज पढ़ के मजमे के साथ बैठ जाए, अपनी अपनी जगह पर ना बैठा रहे। दोजख वाले इतनी परेशानी में होंगे कि जिनकी कोई इंतहा नहीं, कि दुनिया बनने से लेकर आज तक और कयामत तक जितनी तकलीफें, परेशानियां, टेंशन, दुख, मुसीबतें है ना, वो सारा जमा करके एक आदमी पर डाल दो। क्या करो, एक आदमी पर डाल दो तो सारा दुख, सारा टेंशन, ये जहन्नम की अदना तकलीफ के बराबर नहीं हो सकती है। जहन्नम की अदना तकलीफ के बराबर नहीं हो सकती है। तो परेशानी में है, हमेशा के लिए परेशान। और अल्लाह ने जहन्नम के ऊपर भी 19 फरिश्तों को क्या बनाया है, उसका गेट कीपर बनाया है, इंचार्ज। इतने 19 है, वो पूरी जहन्नम के सिस्टम को संभाले हुए हैं। जहन्नम की आग के अंदर तपिश कम हो जाएगी, कुल्लमा खबत जिदना हम साया, जब भी इसकी तपिश कम होगी वो फरिश्ते फिर धोकेंगे इसको, फिर इसको भड़काएंगे। वला नजीदकुम इल्ला अदामा, रोज अजाब की क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी और बोलो क्वालिटी भी बढ़ेगी तकलीफ की। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हमेशा की तकलीफ है, बड़ी जबरदस्त। एक आदमी को रोज 10 डंडे मारो तो पहले दिन लगेंगे, दूसरे दिन कम लगेंगे, तीसरे दिन कम लगेंगे, चौथे दिन और कम लगेंगे, और एक 15-20 दिन के बाद इसको 10 डंडे खाने की रोज हैबिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो, जब तक 10 डंडे नहीं पड़ेंगे इसके दिमाग का टावर काम नहीं करेगा। जहन्नम की तकलीफ की नौयत नहीं, ये नहीं होगी कि आदमी इसमें पड़ा रहे, एक ही तरह की मार पड़ती रहे, इसको हैबिट पड़ जाओ, मार खाने की हैबिट पड़ जाओगी। हैबिट हो जाने के बाद आदमी को तकलीफ का असर नहीं होता है, जहन्नम का मामला ऐसा नहीं होगा। उसमें अल्लाह रोजाना अजाब की कैफियत और कमियत बदलेगा। 19 फरिश्तों को अल्लाह ने इसके ऊपर क्या बनाया है, इंचार्ज बनाया है। और कैसे है, अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद, मजबूत है, डिमडॉल, जिस्मानी ताकत बड़ी जबरदस्त है। और दूसरी चीज है कि ये बेरहम है। कैसे है, इनके दिलों से अल्लाह ने रहम निकाल दिया है, इनके दिलों से अल्लाह ने क्या निकाल दिया है, रहम। जब महशर के मैदान में इंसानों की किस्मत के फैसले होंगे तो अल्लाह ताला वक्तन फवक्तन एक एक जमात को, एक एक आदमी को, एक एक आदमी को, अल्लाह सबका हिसाब लेगा। फिर लोग गिरोह की शक्ल में, जमातों की शक्ल में, बारी 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 दोजख की तरफ जाएंगे। कैसे जाएंगे, बारी बारी, वसीख अल्लज़ीन कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा, जमातों की शक्ल में। तो फरिश्ते जो होंगे दोज़ख के ऊपर, वो उनसे क्या करेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुमको कोई दुनिया में समझाने वाला नहीं आया था कि तुमको यहां आना पड़ा। क्या कहेंगे फरिश्ते इनको, फरिश्ते इनसे क्या कहेंगे, अरे भाई तुम्हारे पास कोई समझाने वाला नहीं आया था तुम्हारे पास,
जिसने तुमको समझाया हो इस दिन के बारे में, तुम दोजख वाले कहेंगे क्यों नहीं, हमारे पास तो समझाने वाले आया था, लेकिन इन समझाने वालों की बात हम उड़ा देते थे। क्या करते थे, इनकी बातों को झुठलाते तो उड़ा देते थे। तो फरिश्ते कहेंगे कि तुमने इनकी बातों को उड़ाया और झुठलाया, अब इसका मजा चखो। चुनाचे वो इतने बेरहम होंगे और ऐसी बेरहमी के साथ इनको दोजख में दाखिल करेंगे कि अलमान वल हफीज, अल्लाह हम सब की और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। किताबों में लिखा है कि मेराज की रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ ले गए, आसमानों पर फरिश्ते आपके इस्तकबाल के लिए आए, आसमान के फरिश्तों ने आपको क्या है खुश आमदेद कहा, वेलकम कहा, आपको सलाम किया, सब हंसकर मिले आपको। कैसे मिले, मुस्कुरा कर हंसकर सब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा कहा, आसमान के फरिश्तों ने। फरिश्तों की एक जमात ऐसी आई कि जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, लेकिन इनमें से न कोई हंसा न कोई मुस्कुराया, इनमें से कोई न हंसा न कोई मुस्कुराया। आपने हजरत जिब्रील अलैहि सलाम से पूछा ये कौन लोग थे, सलाम तो किया हंसकर नहीं किया। हजरत जिब्रील अलैहि सलाम ने फरमाया या रसूल अल्लाह ये दोजख के फरिश्ते हैं, ये कौन है, आप आसमानों के मेहमान बनकर आए इसलिए आपको सलाम करने आए, सब आए ये भी आए, अगर ये किसी से हंसकर और मुस्कुराकर मुलाकात करते तो आपसे हंसकर मुस्कुराकर मुलाकात करते। अंदाजा लगाओ कैसे बेरहम फरिश्ते होंगे। तो अल्लाह ताला महशर के मैदान में सारे इंसानों को तकसीम कर देगा दो हिस्सों में, एक हिस्सा खुदा जन्नत की तरफ रवाना करेगा, एक हिस्से को खुदा दोजख की तरफ रवाना करेगा। जिसकी किस्मत में बदकिस्मती दोजख का फैसला हुआ वो हमेशा की तकलीफ, कभी इसको वहां से नजात ही नहीं मिलेगी। एक आदमी दुनिया में तकलीफ में हो तो मौत से इसको नजात मिल जाती है, और लोग कहते हैं अच्छा हो भाई चलो मौत मर गया नजर तकलीफ से बेचारा नजात पा गया, लोग कहते भी हैं अच्छा हो भाई अल्लाह ने इसको उठा लिया बेचारे को नजात मिल गई राहत मिल गई, बहुत परेशान था बेचारा। लेकिन जिस तकलीफ के बाद अल्लाह ने मौत नहीं रखी है, सच बताओ उस तकलीफ से आदमी कैसे नजात पाएगा। और जिसको खुदा ने जन्नत दे दी वो हमेशा की जन्नत इसको दे दी, कैसी दे दी बोलो, हमेशा की राहत हमेशा का सुख, हाँ उसे किसी चीज का टेंशन नहीं किसी बात का गम नहीं, हाँ दोपहर का खाना कैसा आएगा शाम का कहां से आएगा सुबह का नाश्ता कैसा आएगा चाय पानी कैसे होगा घर के नहीं इस बात का कोई टेंशन नहीं होगा। हाँ और ये नहीं है कि जन्नत के सिस्टम ऐसी हो कि वहां जो पका वो खिलाया जावे, जब आप कहीं शादी में बारात में जावे समझते हो तो वही खिलाते हैं जो बारात वालों के लिए पकाया होता है, वो वहां कोई डिमांड करे कि भाई मुझको तो मुर्गा मुसल्लम देसी चाहिए तो बारात वालों को वो लड़की वाले क्या कहेंगे। किसी वली में जावे और आप कोई डिमांड करें भाई नहीं ये डिश नहीं चाहिए हमको तो ऐसा खाना चाहिए तो दूल्हे वाले क्या कहेंगे आपको, भाई जो है खा लो सब खा रहे तुम भी खा लो। अच्छा कोई डिमांड करता है वहां जाके क्यों भाई आपकी यार रिवाज है डिमांड करने का है, अरे है बोलो, अरे तुम भारत में भी गए कि नहीं गए, सब गए ना जमात में भी जाना चाहिए है ना, चार चार महीने जाने का, जितने भारत में जाते हैं सब चार चार महीने जमात में जाओ। जन्नत में ऐसी सिस्टम नहीं होगी, जन्नत में सिस्टम ये होगी वलकुम फीहा मा तश्तरी अनफुसकुम वलकुम फीहा मा तत्तऊन नुज़लम मिन गफूरिर रहीम, कि आदमी का जो अंदर से दिल चाहेगा वो इसे दिया जाएगा, जो दिल चाहेगा वो दिया जाएगा, जो मांगेगा वो दिया जाएगा, खाली दिल में तमन्ना और चाहत पैदा हो ये खाना है। रिवायात में है कि आदमी को उड़ते परिंदे का गोश्त खाने का दिल चाहेगा तो अल्लाह ताला उड़ते हुए परिंदे को भूनकर इसके पास भेज देगा,
अच्छा वो आग से नहीं भुना होगा, दुनिया में क्या होता है तंदूरी कहां मिलते बोलो, भट्टे में, वो आग में नहीं भुना हुआ होगा, अल्लाह अपने हुक्म से इसको भुनेगा, मत्यो और खिलाया जाएगा। गवां दूध की ले रही है, अल्लाह ताला ने शराब की, ठंडे पानी की, शहद की, लेकिन वो दूध किसी डेयरी से नहीं लाया जाएगा, वहां कोई भैंसे पाल के थोड़ी रखेंगे, धो के छोड़ दी जाए अंदर का लो पियो सब जन्नत वाले, ऐसा नहीं, वो अल्लाह के हुक्म से बना हुआ होगा। हाँ, शहद के छत्ते निचोड़कर वहां इसकी नहरें नहीं जारी की जाएगी, वो अल्लाह के हुक्म से तैयार किया होगा। दुनिया में शराबें पकाई जाती हैं, है ना, बदमजा करके पिलाई जाती हैं, हराम चीजें हैं, लेकिन जन्नत की शराब तो क्या होगी बिदो, पाक होगी। कैसी होगी बोलो, दुनिया में तो एक कतरा गिर जावे, हमारे मौली साहब कहते हैं भाई ये तो पेशाब जैसा है, तीन मरतबा धो के पाक करो तब तुम्हारा कपड़ा पाक, नहीं तो कपड़ा ना पाक। जन्नत की शराब पाक होगी, कैसी होगी बोलो, पाक होगी। आओ तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, वहां सारी नेमतें हैं बंदे की चाहत की, और वो कैसे हैं, हमेशा के लिए हैं। कैसे हैं बोलो, तकलीफें भी हमेशा के लिए, राहतें हमेशा के लिए। तो किसे हमेशा की राहत मिलेगी और किसे हमेशा की तकलीफ मिलेगी, इसका डिसीजन कैसे लिया जाएगा? इस बात को बतलाने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में हर जमाने में पैगंबर भेजे, कौन भेजे, रसूल, नबी और पैगंबरों को भेजा गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को यही बात समझाई, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हाँ, हजरत इसहाक ने, हजरत इस्माइल ने, हजरत याकूब ने, सब ने यही बात समझा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को यही बात समझाई, यहां तक कि मेरा और आपके आकर सरकार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको यही बात समझाई कि किसके लिए हमेशा की राहतें हैं, किसके लिए हमेशा की तकलीफें। हमेशा की राहत उस आदमी के लिए है कि जिसने जिंदगी को ईमान और अच्छे आमाल से बनाया होगा। इसने क्या किया होगा बोलो, जिंदगी को ईमान से और हाँ अच्छे आमाल से बनाया होगा, इसके लिए अल्लाह हमेशा की राहतों का फैसला कर देगा। और जिसने दुनिया के अंदर गफलत बरती, अपनी जिंदगी को ईमान और अमल साले से बनाया नहीं, ये अपनी ख्वाहिशात में पड़ा रहा, मनमानी मनचाही करता रहा, अल्लाह रसूल को भूल कर जिंदगी गुजारता रहा, तो खुदा पाक इसके लिए तकलीफों का फैसला कर देगा। तो अल्लाह ने ये 50-60-70 साल की जिंदगी दे रखी है मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये ईमान और अमाले सालेहात से बनाने के लिए दे रखी है। हमें दुनिया में पैदा इसीलिए किया गया, हमारा जन्म दुनिया में इसी के लिए है, खाना पीना, हगना मुतना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। ये काम जानवर करते हैं, ये काम क्या करते बोलो, जानवर करते, इंसानों की जिंदगी का ये मकसद नहीं है। अल्लाह पाक ने हमें ये जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती दे रखा है कि आदमी अपनी जिंदगी को ईमान से बनावे। कि ईमान क्या है, ईमान ये है कि आदमी अपने ताल्लुक को अल्लाह की जाते आली से जोड़ दे, अपने दिल के यकीन को किससे जोड़ दे बोलो, अल्लाह से जोड़ दे, असबाब से, चीजों से, शक्लों से, शख्सों से निकल जावे और दिल का रुख, अंदर का यकीन अल्लाह की आली जात के साथ वाबस्ता हो जावे। दिल की गहराइयों में अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की कुदरत का सिक्का दिल की गहराइयों के अंदर मेरे भाइयों बैठ जावे और पैवस्ता हो जावे। अल्लाह को मानो, दिल की गहराइयों से मानो, दिल की गहराइयों से, खाली जबान की बोल नहीं बोलो, जबान की बोल नहीं, हाँ, और अंदर का यकीन जो है ना मेरे भाइयों, ये मेहनत से बनता है। किससे बनता है, मेहनत से बनता है। इस यकीन की हमारे पास कोई पुड़िया नहीं है, हमारे पास इसका कोई तावीज नहीं है, इसका हमारे पास कोई दम किया हुआ पानी नहीं है कि हम आपको तावीज बांध दें, वो पुड़िया पिला दे या पानी दम करके आपको पिला दे सुबह शाम और अंदर यकीन बन जावे का हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। इसका इलाज है जान माल वक्त की कुर्बानी। यकीन बनेगा तो क्या होगा? यकीन बनेगा तो इंसान के बदन के जितने निकलने वाले अमाल है ना, ये सारे के सारे अमाल सही हो जाएंगे। इंसान की ये 5-5.5 feet की बॉडी जो है वो अंदर का दिल और दिल के अंदर यकीन की अंदर की ताकत के ताबे है। किसके ताबे है? अंदर का यकीन। इसके जिस्म का इमाम अंदर का दिल है, अंदर का यकीन है। ये अंदर का जितना मजबूत होता है, गहरा होता है, उतना आदमी क्या है अपनी जिंदगी के अंदर नेकी भलाई के काम करता है। और ये जितना कमजोर होता है उतना ही आदमी से क्या है बोलो, नेकी भलाई के काम कम होते हैं और दूसरी जानिब बुराई और गुनाह के काम क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाऊं। देखो नमाज अल्लाह ने 5 वक्त की फर्ज है। आप सब अलग अलग बस्तियों की अलग अलग मस्जिद के लोग हैं, आप सबको पता है कि हमारे मस्जिद के अंदर नमाजियों के कितने परसेंटेज है, सबको पता है। पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले कितने और जुमा पढ़ने वाले कितने? आपने देखा होगा कि मस्जिदें हमारी जुमा के दिन क्या हो जाती है, पैक। नमाजियों से कैसी हो जाती है? एकदम पैक हो जाती है। आप बड़े शहरों में देखो, बड़े शहरों में ये नीचे का माला, नीचे के सहन का हिस्सा, दूसरा मंजिल और ऊपर तीसरा माला और ऊपर की छत, सब पर मस्जिद के खादिम साहब, मौद्दीन साहब जो होते हैं जुमा के दिन फजर की नमाज के बाद सब जगह झाड़ू मारते हैं, साफ करते हैं और सब जगह नमाजियों के लिए सफे और चटाइयां बिछाते हैं। बिछाते कि नहीं बिछाते? आप क्या भी देखा होगा। और जैसे ही जुमा की नमाज खत्म हो जाती है, मस्जिद के जो मौद्दीन साहब होते हैं ना, वो क्या करते हैं? तीसरे माले की सफे को लपेटते हैं, छत को लपेटते हैं, दूसरे मंजिले के लपेटते हैं, मस्जिद के सहन की सफे को लपेटकर जिस रूम के अंदर सफे रहती वहां उठा उठा के सारी सफों को रख देते हैं और रेगुलर जो 2-3 सफ मस्जिद के जमात खाने की उसको छोड़ देते हैं। क्यों? इनको यहां तक नहीं, यहां तक यकीन है जितने जुमे में आए इतने असर में नहीं आने के। ये आए थे जुमे में कौन थे? अरे कौन थे बोलो? कोई आसमानी मखलूक थी, कोई जमीन की मखलूक थी, आसमान से टपके जमीन से उकर निकले। वही मोहल्ले के लोग थे भाई, वही मार्केट के लोग थे। क्यों नहीं आए फिर असर में? क्यों नहीं आते मगरिब में? बात यह है कि अंदर का ईमान का पावर, अंदर की ईमान की स्टीम इतनी कमजोर है कि इन्हें सिर्फ जुमा तक लाती है मस्जिद में, बाकी 5 वक्त मस्जिद के अंदर अंदर का ईमान, अंदर का यकीन इसे मस्जिद के अंदर नहीं लाता। आपने देखा होगा कि बहुत सी मस्जिदें हमारे यहां लबे सड़क होती है, मार्केट में होती है, मोहल्ले के बीच में होती, दूर का आदमी नमाज पढ़ने के लिए आता है और अड़ोस पड़ोस के लोग बोलो नहीं आते। समझे ना? दूर नजदीक का मसला नहीं है, जानने न जानने का मसला नहीं है, इल्म तो सबके पास है। मसला यह है अंदर के यकीन का, अंदर के ईमानी पावर का। जब ये मेरे भाइयों मजबूत होता है, और ये मजबूत होता है कुर्बानियों से। ये जो कहते हैं 4 महीने लगाओ, 4 महीने लगाओ, 4 महीने लगाओ, कोई दीवाने हम लोग हैं यार, पागल है क्यों है भाई? कोई भांग पी रखी हम लोगों ने? अच्छा आप लोग अपने घरों में हमको अच्छे नहीं लगते हैं, आप लोग अपने बीवी बच्चों के साथ हमको अच्छे नहीं लगते हैं, हमको कोई जलन होती है? नहीं मेरे भाइयों, ये पूरी दुनिया के अंदर जो आवाज लगाते हैं कि 4 महीने लगाओ, क्यों लगाओ? ताकि आदमी का अंदर का ईमान बने। माहौल को छोड़ो, घर छोड़ो, वतन छोड़ो, घर की राहतें छोड़ो, घर का खाना पीना छोड़ो, कुर्बानी दो। कामकाज है, मशगूल है, हम जानते हैं, कोई फुर्सत वाला नहीं है, हर एक के पास अपना मशगला है, लेकिन सेटिंग करो। क्या करो? सेटिंग करके ये कुर्बानी दो ताकि अंदर का ईमान बने। अंदर का क्या बने बोलो? ईमानी असल बुनियाद है आदमी। इसीलिए कब्र में आदमी को जो सवाल होता है किसका होता है? कुमार का। तेरा रब कौन है? तेरे नबी कौन है? तेरा दीन क्या है? ईमान का सवाल है। जो चीज इम्पोर्टेड होती है इसका सवाल भी पहला होता है, जो चीज अहम होती है उसका सवाल भी क्या होता है बोलो? पहले होता है। कब्र में जाने के साथ हर एक आदमी को ये तीन सवाल है। यूं देखो तो सबको मालूम है इसके जवाब, लेकिन आदमी की ये 100-200 ग्राम गोश्त की बनी हुई जबान थोड़ी जवाब देगी। अंदर का यकीन बोलेगा। क्या बोलेगा? अंदर का यकीन बोलेगा। वो एक बुजुर्ग का किस्सा है ना। हाँ, इन्होंने एक तोते को पाला और तोते को पाला और इसे कलमा सिखाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तोता हर वक्त कलमा पढ़े, घर में कोई आवे तो भी कलमा पढ़े। हाँ, एक दिन ऐसा हुआ कि वो तोते जिस तोते को जिस पिंजरे में रखा था वो पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया। घर की बिल्ली ने मौका देखकर उस तोते को पकड़ा और इसको लेकर नीचे आई और इसका गला दबाया तो उस तोते के मुंह से निकल गया टें 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 और मर गया। वल्लाह वाले रोने लगे। लोगों ने कहा हजरत इसमें रोने की क्या बात, हम दूसरा तोता ला देंगे आपको। बोले इस पर नहीं रो रहा, इस पर नहीं रो रहा, मैं रो इस पर रहा हूं तो मैंने इसको कितनी मेहनत से कलमा सिखाया, लेकिन जब मरने का वक्त आया तो इसने टेंटे टें किया, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा। समझते हो? ये दिल ऐसा ही है, मरते वक्त जबान पर वही आता है। इसकी मिसाल स्पंज, स्पंज आता है ना, स्पंज घरों में रखती है औरतें पानी वगैरह पहुंचने के लिए, देखे रहे? हाँ, कि इस स्पंज को आप पानी में डुबो, निचड़ो, क्या निकलेगा? अरे बोलो क्या निकलेगा? और इसको दूध में डुबो फिर निचड़ो, क्या निकलेगा? इसको आप क्या है, गन्ने के रस में डुबो, फिर डुबो कर फिर निचड़ो, क्या निकलेगा? गन्ने का रस। वो मेरे भाइयों, मरने के वक्त मौत का फरिश्ता आदमी के दिल को दबाता है, उसमें से वही निकलता है जो अंदर भरा हुआ होता है। अगर खेत भरा है तो मरने के वक्त खेत निकलेगा, दुकान भरी है तो अंदर से दुकान निकलेगी, बी बच्चों की मोहब्बत भरी है तो मरते वक्त वो जबान पर आ जाएगा। अरबी के शाहिन ने कहा इन्नमा जुअलल लिसानु अलल फुआद दलीला, जबान को अल्लाह ने दिल की तर्जुमानी करने के लिए बनाया है। जबान को क्या बनाया है भाइयों? दिल की तर्जुमान, दिल का ट्रांसलेट है, ये दिल की भाषांतर करने वाली है। जो अंदर भरा होता है ना वही आदमी वही चीज जबान पर आ जाती है। मौत के वह फरिश्ता दबाता है ना वही चीज फिर जबान पर आ जाती है। इसलिए हदीस में है कमा तहयून तमूत, जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी, जैसी जिंदगी गुजारेंगे तो कैसी ही मौत आएगी, ये जाब्ते की बात। हाँ, ये बात सारे पैगंबरों ने समझाई कि दिल के यकीन को ठीक करें, मजबूत बनाओ। कितना मजबूत बनाओ मैं बोलो, कितना मजबूत बनावे हमारे दिलों का यकीन? हम मेहनत करके इतना मजबूत बनावे कि वो हमें 100% अल्लाह के फराइज पर खड़ा कर दे। क्या कर दे बोलो? 100% अल्लाह के फराइज पर खड़ा कर दे और 100% अल्लाह के हराम से हमको रोक दे। उलमा ने लिखा इतना ईमान बनाना हर एक आदमी पर फर्ज ऐन है। क्या है? फर्ज ऐन है। बच्चे फर्ज ऐन समझते हो ना, जैसे नमाज फर्ज ऐन है, रोजा सब पर फर्ज ऐन है, मालदार पर ज़कात फर्ज ऐन है, हज बैतुल्लाह का फर्ज ऐन है कि सबको करना पड़ेगा। ऐसे ही हर मुसलमान को अपनी दुनिया की जिंदगी में मेहनत करके अपने दिल के अंदर इतना ईमान बनाना और इतना यकीन बनाना फर्ज ऐन है, जो ईमान इसे अल्लाह की इताअत पर 100% खड़ा कर दे और खुदा की नाफरमानी से 100% इसको रोक ले। अब हम में से हर एक आदमी अपने ईमान को जांचे। ओ भाई, हम में से हर एक आदमी अपने ईमान को जांचे, है ना? किसी के माथे पर तो ईमान लिखा नहीं होता है, ईमान की पट्टी मारे ली है। अच्छा, दिल कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें आर पार हमको दिखे, इसका ईमान 30% है, इसका 50% है, 40% है, इसका 50% है, इसका 70% है, ऐसा कुछ दिखता है? हमें से हर एक आदमी देखे कि इसकी जिंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कितना है। बालिग होने से लेकर आज तक इसने कितनी नमाजों को जमात के साथ एहतमाम से पढ़ा। रोजे इस पर अल्लाह ने फर्ज किए, तब से लेकर आज तक इसने कितने रोजे रखे। सर्दी के भी रोजे गुजरते हैं, गर्मी के रोजे भी आजकल चलते हैं, है ना, आजकल गर्मी के। हर एक आदमी अपने आप को जांचे पड़ताल है। हम किसी पर क्या उंगली उठावे, मैं खुद अपने गरेबान के अंदर मुंह डाल के देखूं कि मेरी जिंदगी में नमाज का एहतमाम कितना है, रोजों का एहतमाम कितना है, मेरी जिंदगी में अल्लाह की किताब तिलावत का एहतमाम कितना है, मुझे कुरान से कितनी मोहब्बत है, मुझे अल्लाह के जिक्र के साथ कितना लगाव है, सुबह शाम की तस्बीहात का मेरी जिंदगी में कितना एहतमाम है। अल्लाह ने जो चीजें मुझ पर जरूरी करार दी है, इसके इल्म को हासिल करने का मेरी जिंदगी के अंदर मुझे कितना टेंशन है, और मैंने आज तक उस लाइन का कितना इल्म हासिल किया है। अल्लाह के, ये तो अल्लाह के हुकूक हैं, खुदा की मखलूक के भी हुकूक मुझ पर हैं। मुझ पर मेरे माँ बाप का हक है, बी बच्चों का हक है, भाई बहनों का हक है, मैं पड़ोसियों के साथ रहता हूँ मोहल्लों में, कोई जंगल में तो नहीं रहता हूँ, मेरे आसपास मोहल्ले में मुसलमान मेरे पड़ोसी हैं, मेरे पड़ोसी हैं, इन पड़ोसियों का मुझ पर हक है। हाँ, मैं जिसके साथ कारोबार करता हूँ, जिस मार्केट में मेरे इधर भी दुकान है, इधर भी दुकान है, चाहे वो मुसलमान हो या और कोई हो, का इसका भी मुझ पर हक है। मेरा जहाँ खेत है, बगल में दूसरे का भी खेत है, इस पड़ोसी का भी मुझ पर हक है, बाजू के खेत वाले का भी मुझ पर क्या है, हक है। हम सब अपनी जिंदगियों को देखें कि इन आमाल के बारे में हमने आज तक अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इताअत की है, इसके बारे में मैं आप कितना चौकन्ना है और कितने गाफिल हैं। हर एक आदमी अपने गरेबान में मुंह डालकर इसको देख सकता है कि मेरा ईमान मुझे कितना फराइज पर खड़ा कर, और मेरा ईमान मुझे हराम से कितना रोकता है, मेरी ये आंख दिन पर क्या क्या देखती है। हमें से हर एक आदमी जानता है कि आंख कहां उड़ती है, कहां जाती है, क्या देखती है, देखने की चीजें देखती है या न देखने की चीजें देखती है। जबकि अल्लाह ताला का तो इरशाद यह है, यालमु खाइनतुल अयुन, आंखों की चोरी को अल्लाह जानता है, आंखों की। बोलो, 4-5 आदमी साथ में चले जा रहे हैं और एक ने क्या है, किसी सड़क पर जाने वाली किसी औरत, किसी जवान लड़की की तरफ उसने आंख उठाकर देख लिया, इसके साथ चलने वाले 3-4 जनों को कुछ पता नहीं है, लेकिन बोलो अल्लाह जानता है कि नहीं जानता है। घर में बैठे बैठे अपने खिड़की से पड़ोस की औरत को देखता है, न इसकी बीवी को पता है, न इसकी बहू बेटी को पता है, अल्लाह जानता है ना। और आजकल तो मोबाइल हाथ में आ चुके हैं, इसकी स्क्रीन पर ये बैठे बैठे कमरा बंद करके क्या देखता है, अंदर कमरे में बैठकर क्या देखता है, कोई नहीं घर का आदमी जानता है। बोलो अल्लाह ताला इससे नावाकिफ है, अल्लाह से ये ढकी छुपी चीज है। यालमु खाइनतुल अयुन, मेरा ईमान मेरी आंख को हराम से कितना रोकता है, मेरा ईमान मेरे कान को हराम से कितना रोकता है, मेरा ईमान मेरी जबान को हराम बातों से, गीबत से, झूठ से, चुगली से, तोहमत से, बोतान से, हाँ लायानी से मुझे कितना रोकता है। हम सब अपने आप को जांचे पड़ता है, ये कदम अल्लाह की इताअत में कितने चलते हैं और खुदा की नाफरमानी में कितने चलते हैं, ये हाथ अल्लाह की इताअत में कितने उठते हैं, और ये दिल दिमाग, ये दिल दिमाग अल्लाह की इताअत के बारे में क्या सोचता है और खुदा की नाफरमानी के बारे में बैठे बैठे क्या सोचता है। बोलो मेरे भाइयों, हर एक आदमी इसको जान सकता है, अपने खुद की वो खुद जांच पड़ताल कर सकता है। अल्लाह ने हम सबको उसका ईमान कितना है इसका एक थर्मोमीटर इसके हाथ में पकड़ा दिया कि मैं अपने ईमान को जांचूं, मैं अपना कलमा जांचूं, मैं अपने अंदर के यकीन को जांचूं, मैं अपने अल्लाह से मेरा कितना ताल्लुक है, उस ताल्लुक का मैं खुद अपनी जिंदगी के अंदर जायजा लूं, मैं खुद जायजा लूं, मुझे पता चल जाएगा। ये हाथ पैर है ना, ये हमारे नहीं है। हाँ, और मेरे भाइयों ये हाथ पैर है ना, ये हमारे नहीं है, ये अल्लाह मियां के सरकारी गवाह है। ये क्या है बोलो? ये सरकारी गवाह है, सरकारी गवाह। यहां ये जबान, ये नाक, ये हाथ, ये पैर, ये दिल, ये दिमाग, सब चीज अल्लाह मियां की सरकारी गवाह है। महशर के मैदान में जब आदमी को उसके गुनाह गिनवाए जाएंगे, वो कहेगा मैं नहीं मानता इसको, तेरे फरिश्तों ने जाती किया है, अरे मैंने थोड़ा ये सब किया है, मैं तो जब मानू जब तू मेरे में से किसी को गवाह बना दे। अच्छा, अल्लाह मियां कहेगा अच्छा भाई, इसके मुंह पे ताला मार दो। और खुदा पाक इसके एक एक उज्व को बोलने का हुक्म देगा। बोलो, आज जबान हमारे इख्तियार से बोलती है ना, कल हमारे कंट्रोल बार हो जाएगी। हाथ बोलेगा, पैर बोलेगा, आंख बोलेगी, कान बोलेगा, और बदन का रोंगटा रोंगटा बोलेगा। तब आदमी हैरत के मारे यूं कहेगा कि तुम क्यों बोलते हो, तुमका तुम्हारी राहत के लिए तो मैंने दुनिया के अंदर ये सब किया था। पैर बोलेगा अंदर हराम डाला है, नाजायज डाला है, इसका मार के डाला है, इसका जबरदस्ती छीन के खा गया हूं। पेट बोलेगा, वो आदमी अपने उज्वों से मुखातब करेगा, अरे तुम बोलते हो, तुम मेरे खिलाफ बोलते हो, जबकि दुनिया में तुमको राहत पहुंचाने के लिए तो मैंने ये सारे जतन किए थे। आजा कहेंगे कौलू अंतकन अल्लाह उल्लती अंतका कुन रहे, हमें तो उस अल्लाह ने कुव्वत गोयाई और बोलने की ताकत अता फरमाए जिसने हर चीज को बोलता कर दिया। मेरे भाइयों बहुत संगीन मसला है, जिंदगी गुजार देने के लिए नहीं है, खा पी के हम मुत के बच्चे पैदा करके गांव के अंदर क्या होगा कि 50-60 साल का बुढ़ा होकर मर गया, अब क्या होगा। रिवायात में है कि आदमी अपनी इस गफलत कर आखिरत में इतना पछताएगा और इतना रोएगा का इसके रोने को जमा कर दे तो इतना बड़ा तालाब बन जावे जिसमें कश्तियां चल सके। खुदा की कसम वो रोना महशर के मैदान में इसे फायदा नहीं देगा, वो रोना इसे फायदा बोलो देगा नहीं देगा। हाँ, आदमी पछताएगा। तो हर एक आदमी अपना अंदर का ईमान, अंदर का यकीन, अंदर का कलमा, अल्लाह से अपना ताल्लुक इतना बनावे कि जो उसे अल्लाह की इताअत पर, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा पर 100% खड़ा कर दे। हाँ, और वो उसे अल्लाह की नाफरमानी से, खुदा के हराम से इसको क्या कर दे बोलो, रोक दे। हाँ, हज़रत मौसूस सर अब्दुल्लाह फरमाते थे कि इतना ईमान बनाना हर मुसलमान पर फर्ज आइन, जैसे इस्लाम में नमाज फर्ज आइन है, रोजा फर्ज आइन है, कि हर मुसलमान अपने कलमे ईमान पर मेहनत करे और मेहनत करके अंदर के यकीन को बनावे। अंदर के क्या बनाए बोलो, यकीन को। अंदर का यकीन बनेगा ना तो आदमी तन्हाई के अंदर बैठा होगा ना तो भी गुनाह से बच जाएगा। अंदर का यकीन बनेगा तो कोई गुनाह की दावत देगा तो भी क्या कहेगा आदमी, नहीं। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को जुलेखा ने गुनाह की दावत दी। हाँ, अंदर का ईमान और यकीन था, क्या फरमाना ले, खाना महा अल्लाह की पना, ये नहीं कर सकता मैं। खूबसूरत है जुलेखा, बादशाह की औरत, आओ सज के धज के आई गुनाह की दावत देने के लिए। लेकिन अंदर का ईमान जब आदमी का बन जाता है, आदमी हराम की कमाई का रुपया लाखों की शक्ल में दिखे, लेकिन जब इसे पता चले ये हराम है, ये क्या है, हराम है, तो आदमी इसको छोड़ देगा कि नहीं भाई ये नहीं चाहिए। हाँ, क्यों, ये हराम का लुकमा पेट में जाने के बाद ये मुझे मस्जिद की तरफ नहीं ले जाएगा, नेकी की तरफ नहीं ले जाएगा, ये कहां ले जाएगा बोलो, ये गुनाह की तरफ ले जाएगा। आदमी जैसा खाता है ना वैसे ही कामों की इसकी तौफीक होती है, हलाल खाता है तो हलाल कामों की तौफीक होती है, और हराम खाता खिलाता है तो फिर क्या होती है बोलो, हराम कामों की ही तौफीक होती है। वो तो रिक्शा के अंदर आप पेट्रोल डालोगे ना तो बगैर धुमाड़े और बगैर आवाज के चलेगी, और आपने उसमें केरोसिन डाल दिया तो बोलो अब आवाज भी करेगी, धुमाड़ा भी निकालेगी, धुआं भी निकालेगी, नहीं निकालेगी, आवाज भी करेगी, क्यों, अंदर डाला है ऐसा, वो जैसा डाला है वैसी चलेगी, ऐसा बोलेगी। आदमी का अंदर का ईमान बनेगा तो लाखों की हराम की कमाई आदमी छोड़ देगा। हाँ,
ناجائز روپیہ چھوڑ دے گا، ناجائز آمدنی چھوڑ دے گا، ناجائز کھیتی چھوڑ دے گا، یہ تو ناجائز ہے، یہ نہیں کر سکتا میں. اندر کا ایمان وہ جائز کو لے گا، حلال کو لے گا. ہاں، اور جب ایمان بنے گا تو یہ اطاعت والی زندگی پر آئے گا. تو جو بندہ اطاعت کی زندگی گزارے گا، حق تعالی شانو دنیا کے اندر اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. کیا عطا فرمائیں گے بولو؟ پاکیزہ زندگی. کہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ خدا پاک سب سے پہلے اس بندے کو دل کا سکون عطا فرمائیں گے. کیا عطا فرمائیں گے؟ دل کا سکون، دل کا اندر کا چین اللہ عطا فرمائیں گے. سکون اور چین جو ہے نا، وہ اطاعت والی زندگی میں ہے، حکموں والی اور اعمال والی زندگی کو اپنانے میں ہے، فرما برداری کی زندگی میں ہے. اللہ نے دل کا سکون اس کے اندر رکھا ہے. سمجھے میرے بھائیوں، ایک آدمی ایک مکان میں رہتا ہے جس میں 10 کمرے ہیں، ہر کمرے میں اے سی ہے، 2-2 ٹن کا اے سی رکھا ہے. وہ اے سی چالو کر کے اوپر کے بدن کی کھال کو تو ٹھنڈا کر سکتا ہے، لیکن اندر کا دل اس کا سکون نہیں پذیر ہو سکتا ہے، دل میں چین نہیں آ سکتا ہے اگر اس کی زندگی میں اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نہیں ہے. دل کا سکون دے گا اللہ. اطاعت والی زندگی میں اللہ لوگوں میں محبوبیت دے گا. اللہ کیا دے گا بولو؟ محبوبیت دے گا، عزت دے گا. ہاں، عزت کا نظام اوپر سے ہے، نیچے سے نہیں ہے. عزت کا تعلق کہاں سے بولو؟ حدیثوں میں ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل امین دیگر فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ اللہ میاں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے. ہاں، وہ دھار میں رہتا ہے، جاگرے میں رہتا ہے، مرزا پور میں رہتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اسے محبت کرو. فرشتے آنے کے بعد، او اللہ، فرشتے نیچے آنے کے بعد مخلوق خدا کے دل میں بات ڈالتے. اللہ اپنے بندے اور بندیوں کے دلوں کے اندر فرشتوں کے ذریعے سے بات ڈالتے ہیں، تو لوگ اس کی کیا کرتے ہیں بولو؟ عزت کرتے ہیں، لوگ اس کو چاہتے ہیں، ہے نا؟ زبانوں پر اس کی محبت، زبانوں پر لوگوں کی عزت، لوگ اس کا نام بھی اس کی غیر حاضری میں عزت کے ساتھ لیتے ہیں. ذلت کا نظام بھی اسی طرح اوپر سے چلتا ہے، عزت کا نظام بھی اوپر سے چلتا ہے. جب اطاعت والی زندگی ہوگی، او میرے بھائیوں، یقین بنانے کے راستے سے جب ہماری زندگی میں اطاعت آئے گی تو اللہ وحدہ لا شریک لہو ہمیں عزت والی زندگی دے گا. کیا دیکھی دیکھا بولو؟ عزت پیسوں میں نہیں ہے. او میرے بھائیو، پیسوں میں عزت نہیں ہے. ہجڑوں کے پاس بھی 2 لاکھ روپے ہوتے ہیں اور رنڈیوں کے پاس بھی 2 لاکھ روپے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوئی عزت کرتا ہے بولو؟ ان ہجڑوں کی، بڑووں کی کوئی عزت کرتا ہے؟ اس کی بنیاد یہ نہیں ہے، اس کی بنیاد اطاعت ہے. اللہ دیتا ہے، اطاعت کی بنیاد پر دیتا ہے، فرما برداری کی بنیاد پر دیتا ہے. اور فرما برداری آدمی کی زندگی میں ایمان کے بننے کے راستے سے آتی ہے. یہ جو کہتے ہیں 4 مہینے نکلو، 4 مہینے نکلو، کیوں نکلو؟ اسی ایمان کلمی کو بنانے کے لیے، تاکہ زندگیوں کا رخ اطاعت پر آ جاؤ. اللہ روزیوں میں برکت دیتا ہے. اللہ کیا دیتا ہے بولو؟ روزیوں میں برکت دیتا ہے. 500 کمائے گا، خدا ساری ضرورتیں پوری کر لے گا. 100 کمائے گا، اللہ ضرورت پوری کر دے گا. خدا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر اس کو مجبور نہیں کرے گا. کبھی زندگی میں وہ حالات نہیں آئیں گے کہ وہ کسی کے سامنے جا کر، یار 200 دینے، 500 دینے، 1000 دینے، بہت ضرورت ہے، ایک دم ایمرجنسی ہے، دینے بھائی. کہ نہیں، یہ حالات کبھی نہیں آئیں گے زندگی میں. اور اگر آدمی اطاعت سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، روز کا 5000-10000 کماتا ہے، تو رات کو آئے گا تو بیوی کہے گی، کیا بچہ گر گیا تھا نا دواخانے میں، لے گئے، 2000 کا خرچہ ہے، 2000 کا خرچہ ہے. یہ گھر میں گرا ہوا ہے نا گیس، وہ بگڑ گیا تھا تو وہ گیس کا ریفر کرنے والے 500 روپیہ وہ لے گیا. خرچے کی فہرست بنا دے، شام کو دیکھوں گے تو جوں کے توں رہ جائیں گے. کہاں رہ جائیں گے بولو؟ 5000. حساب کرو گے تو کیا ملے گا؟ حساب کے اندر 0 ملے گا، کچھ نہیں. کیا ہے؟ بے برکتی ہے. دکھتا تو بہت بڑا ہے، दिखता तो बहुत बड़ा है लेकिन क्या है बोलो, बेबरकत। जैसे किसी को वो शहद की मक्खी काट जावे तो हाथ फूल जाता है। हाथ क्या हो जाता है? हाँ, बड़ी मक्खी काट जावे और हाथ फूल जावे। और कोई कह रहे यार इसके तो बहुत जबरदस्त मसल है, बहुत बड़ी ताकत है इसके पास। देखो मसल है इसके, कोई मसल सही है, ताकत है इसके पास। अरे मक्खी काट गई है इसको तो, ये उसको कुछ कितना परेशान है। तुमको मसल दिखते हैं, उसको पता है कि कितनी इसको मुसीबत है इसके लिए। बेदीन आदमी को जब देखता है ना आदमी खुशहाली के अंदर तो राल टपकाता है। लोग कारून को देखकर राल टपकाते थे, कहते थे इन उदुहद्दीन आदमी ले, कानून तो बहुत नसीबदार, बड़ा नसीबे वाला आदमी है। क्या कहते थे? बड़ा नसीब वाला कानून है। क्या इसके पास? ओ ढेर सारी दुनिया है। लेकिन जब खुदा ने इसको उसके माल के साथ जमीन के अंदर धसाया तो कान पकड़कर कहने लगे, नहीं भाई बात तो यह है, अल्लाह जिसको चाहता है रिस्क देता है और जिसको चाहता है अल्लाह तंग कर देता है। बात समझे? बेदीनी के साथ अगर किसी के पास माल है तो ये बहुत जबरदस्त खतरे की घंटी है। ये क्या है बोलो? हाँ, बेदीनी के साथ खतरे की घंटी है। और दीनदारी के साथ अगर आदमी के पास दुनिया है तो अल्लाह उसमें खैर और बरकत डालता है। एक आदमी बेदीन है, जिंदगी में नमाज नहीं है, तिलावत जिक्र का एहतमाम नहीं है, फराइज छोड़कर जिंदगी गुजारता है, गफलत की जिंदगी है, अवारापन इसके अंदर, और ढेर सारी दुनिया है। गांव के लोग भी कहते रहे यार क्या कहना, क्या नसीबा लेकर आया है, क्या नसीब लेकर आया है कि नहीं? पानी मांगता है दूध मिलता है, दूध मांगता है तो क्या मिलता है? शरबत मिलता है। अरे मेरे भाइयों, ये तो बहुत डरने की बात है जब जिंदगी के अंदर अल्लाह का दीन, दीन की मेहनत ना हो। हाँ, अल्लाह उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तेबा ना हो और आदमी की जिंदगी के अंदर मेरे भाइयों दुनिया रेलम्पेल हो, ये बहुत खतरनाक है। आपने देखा होगा घरों में जब चूहे ज्यादा हो जाते हैं, चूहे बहुत परेशान करते हैं, तो घर का जो मालिक होता है ना इन चूहों को पकड़ने के लिए पिंजरा लाता है। क्या लाता है बोलो? पिंजरा लाता है और पिंजरा वहां रखता है जहां घर में रात को चूहे बहुत परेशान करते हैं, और उस पिंजरे के अंदर घी की तली हुई रोटी रखता है, देसी घी। क्या रखता है बोलो? देसी घी चोपड़ के, हाँ, तरबतर करके वो पिंजरे में देसी घी की रोटी रख देता है। तो ये देसी घी की रोटी इसने चूहों के लिए रखी है, खुश होकर रखी है, नाराज होकर रखी है? अरे बताओ, बहुत खुश है चूहों से कि खाओ देसी घी की रोटी, खाओ डालडा भी नहीं ऐसा। वो पकड़ने के लिए, जब बेदीनी के साथ दुनिया की रेलम्पेल हो तो ये घी में तली हुई रोटी है। ये क्या है बोलो? हाँ, अल्लाह मियां ने घी में तली हुई रोटी रखी, अल्लाह मियां पकड़ना चाहता है। अल्लाह मियां क्या चाहता है बोलो? पकड़ना चाहता है। हाँ, ये अल्लाह की सुन्नत है कि दुनिया के दरवाजे खोल देता है जब किसी की पकड़ करना चाहता है, फिर अल्लाह अचानक इसकी पकड़ कर लेता है। कैसे? अचानक, आनन फानन, इसके वहमे गुमान में नहीं होता है और अल्लाह मियां की पकड़ इसमें आती है और इसका सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इताअत वाली जिंदगी मतलूब है, हुक्म वाली, अमाल वाली जिंदगी मतलूब है। और ये जिंदगी बनाने के लिए अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की एक सुन्नत है, वो ये है कि आदमी अंदर का ईमान बनावे, अंदर का यकीन बनावे, अपने अल्लाह को अल्लाह माने दिल की गहराइयों से कि मेरी मौत अल्लाह के कब्जे में, मेरी जिंदगी अल्लाह के कब्जे में, मेरी इज्जत अल्लाह के कब्जे में, जिल्लत अल्लाह के कब्जे में, मेरी सेहत अल्लाह के कब्जे में, मेरी बीमारी अल्लाह के कब्जे में, मेरा सुख अल्लाह देता है, मुझे दुख अल्लाह पहुंचाता है, मुझे राहत अल्लाह देता है, तकलीफ अल्लाह देता है। कौन अल्लाह जो रात को दिन से पलटता है, दिन को रात से पलटता है, जो सर्दी से गर्मी और गर्मी से बारिश, साल भर में तीन मौसम को पलटता है, जो साल के 12 महीने के मौसम बदलता है, जो अल्लाह ताला रात को दिन में, दिन में रात को पलटता है, जो मुर्दे से जिंदे को निकालता है, जिंदे से मुर्दे को निकालता है, जो खुदा किसी को देना चाहे तो इतना दे देता है कि खुदा पाक इसे बेमिसाल दे देता है, और किसी से ले लेना चाहे तो अल्लाह पाक इसे राय राय का और दाने दाने का मोहताज कर देता है, कचरे कचरे का खुदा इसे मोहताज बना देता है। वो अल्लाह है। وہ اللہ کو میرے بھائی کو دل کی گہرائیوں سے یقین کرنا کہ اسی اللہ کے قبضے قدرت میں میرا ہر مسئلہ ہے. میں گھر پر رہوں تو میرا کام کون بناتا ہے بولو؟ اللہ بناتا ہے. اور میں گھر سے باہر جاؤں تو بھی کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. میں 4 مہینے چلا گیا تو میرے سارے مسئلے اللہ کے قبضے میں ہیں اور میرا خدا ان ساری چیزوں کا کیا کرے گا؟ اللہ پاک نگرانی کرے گا. عمر کے زمانے میں ایک آدمی بہت مدت کے بعد اللہ کے دین کی محنت کے سفر سے لوٹا. جب گیا تو اپنی بیوی کی حاملہ چھوڑ کر گیا تھا. لوگوں نے کہا کہ بھائی تو چلا گیا, تیری بیوی کا انتقال ہو گیا اور تیری بیوی کو ہم نے فلانی جگہ پر دفن کر دیا, لیکن ایک معاملہ عجیب ہے. بولے رات کو عجیب وہاں پر سے ایک آگ دکھتی ہم کو, روشنی آگ کی. تو آدمی اس قبر پر گیا تو اس نے دیکھا قبر کے اندر اس کی بیوی سوئی مری ہوئی سوئی ہوئی ہے اور ایک بچہ ہے جو وہاں پر کھیل رہا ہے. تو ایک غیب سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ کیا آواز آئی کہ بھائی تو جب اللہ کے راستے میں گیا تھا تو تو نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تیرے پیٹ میں ہے وہ اللہ کے حوالے, کہ تو اپنے پیٹ کے بچے کو اللہ کے حوالے کر کے گیا تھا, اس لیے ہم نے اس بچے کی کیا ہے, اس کی ماں حمل کی حالت میں انتقال کر گئی, بچہ یہی پیدا ہوا, ہم نے اس کی یہاں حفاظت کر لی ہے. اگر تو یوں کہہ کر جاتا کہ تجھے اور تیرے پیٹ کے بچے کو اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہوں تو اپنی بیوی کو بھی کیا ہے سفر کی واپسی پر زندہ پاتا. کون حفاظت کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. ہاں اللہ پاک ضائع نہیں ہونے دیتا ہے. ایک آدمی 4 مہینے نکلے گا کیا سمجھتا ہے اس کا کاروبار ختم ہو جائے گا, کھیتی ختم ہو جائے گی, گھر اجڑ جائے گا؟ ارے بتاؤ میرے بھائیوں, نہیں, اللہ کی مددیں اس کے ساتھ ہیں. کیا ہے بولو؟ او غیبی مدد, اللہ کی طاقتیں غیبی. اللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ, اللہ اپنے پورے خزانوں کے ساتھ ان نکلنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ان نکلنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے. ہاں خدا پاک ان کا نگران ہوتا ہے, جس کی بیوی کا, بچے کا, کاروبار کا, کھیت کا, اس کے گھر کے سامان کا, ایک ایک چیز کی اللہ نگرانی کرتا ہے. اچھا اس کے نکلنے پر کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کا اندر کا ایمان بناتا ہے, اندر کا یقین بناتا ہے. خدا ہدایت جیسی عظیم دولت نکلنے پر اس بندے کو دیتا ہے, اپنا تعلق دیتا ہے, اپنی محبت دیتا ہے, اپنی معرفت دیتا ہے. خدا پاک اسے دین کی ایک فکر دیتا ہے, آخرت کی ایک فکر اس کے اندر پیدا کرتا ہے. کہ اب تک کی زندگی غفلت کی تھی, اللہ کے راستے میں نکل کر, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر, گشتوں میں لوگوں کو دعوت دے کر, ماشاءاللہ ایک فکر اندر سے پیدا ہوئی, میں تو مسلمان ہوں, مجھے تو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, میری کھیت کے لیے نہیں, میری دکان کے لیے نہیں, میرے گھر کے لیے نہیں, میرے گاؤں کے لیے نہیں, میں تو آخرت کا بندہ ہوں, آخرت کا, دنیا کا بندہ نہیں ہوں. آدمی کی سوچ بدلتی ہے. کیا بدلتی ہے بولو؟ اندر کی سوچ, اندر کی فکر. ہاں 4 مہینے بار بار نکلو. کیوں بار بار نکلو؟ اپنی سوچ بدلو. اچھا آدمی کی جیسی سوچ بنتی ہے نا, آدمی اپنے تن من اور دھن کی تینوں طاقتیں اسی پر لگاتا ہے. ہر ایک انسان کو اللہ نے 3 طاقتیں دے رکھی ہیں. کتنی طاقتیں دے رکھی بولو؟ تن من اور دھن. آدمی کی جو سوچ بنتی ہے آدمی اپنی یہ تینوں طاقتوں اسی پر لگاتا ہے. ہاں ایک آدمی کی سوچ جب آخرت کی نہیں ہوتی ہے, قبر کی, برزخ کی نہیں ہوتی ہے, تو اس کے پاس پیسے آئیں گے تو یہی سوچے گا 2 بیگے ہیں, 2 بیگے اور لے لو, کہ یہ میرے 2 چھوکرے ہیں, ہر ایک کے 2-2 بیگے ہو جائیں گے. ایک دکان ہے, دوسری دکان لے لو, میرے 2 چھوکرے دونوں کی ایک ایک دکان ہو جائے. میرا ایک مکان ہے, دوسرا مکان بھی لے لوں, کہ کیا ہو جائیں گے, میرے 2 چھوکرے ہیں, 2 بیٹے, دونوں کا ایک ایک مکان ہو جائے گا. سوچ بدلے. کیا سوچ ہے؟ دنیا کی سوچ. یہاں سب آباد کروں, یہاں سب لگاؤں, یہاں سب بساؤں. وہ اپنے پیچھوں کی سب کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے, بیوی کی, بچوں کی, ان کی, فن کی, تن کی. ارے بھائی سب اپنا مقدر کا لے کر آئے. بولو بیوی بھی تیرے پاس ہے, وہ تیرا نہیں کھاتی, اپنے مقدر کا کھاتی. تیری اولاد تیرا نہیں کھا رہی ہے, میری اولاد میرا نہیں کھا رہی, وہ تو اپنے مقدر کا دانا کھا رہی ہے. میرے میرا نہیں ہے, میرے وہ تو اپنے مقدر, وہ تو اللہ نے مجھ کو ذریعہ بنایا. اب میں ان سب کے فکر میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنی آخرت اور اپنی 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 برزخ سے غافل ہوں. ان کی دنیا کو آباد کرنے میں اور ان کو ٹھکانے پر لگانے میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنی برزخ سے, قبر سے, آخرت سے غافل ہوں. کہ میری جان مال میں، میری صلاحیت اور استعداد میں، میری قبر اور میری آخرت کا حصہ نہیں ہے، ہے تو بھی نام کا تھوڑا سا ہے، کتنا ہے؟ تھوڑا سا. ایک آدمی سعودی میں رہتا ہو، کہاں رہتا ہو بولو؟ اس کی فیملی یہاں ہو، تو وہ جو کچھ کمائے گا تو اس کی پائی پائی جمع کرے گا، اور کہاں بھیجے گا؟ کہاں بھیجے گا؟ مرزا پور میں بھیجے گا. کیوں بھیجے گا؟ اس کی فیملی یہاں ہے نا. وہ پیٹ کاٹ کے پیسے جمع کرے گا، دو وقت کا کھانا ایک وقت میں چلا لے گا، ہاں، اور وہ پیسے جمع کر کے اپنے بی بچوں کے لیے گھر پر بھیجے گا، یہاں جمع کرے گا، یہاں ڈالے گا، کہ وہاں کوئی چیز خریدے گا، وہاں گاڑی خریدے گا، بولو، وہاں زمین خریدے گا، وہاں مکان خریدے گا، وہاں اڑائے گا پیسہ. وہ نہیں، وہ جانتا ہے میرے خرچ کرنے کی جگہ اور مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، میں تو یہاں پر کیا ہے، ورک ویزا پر ہوں، میرا ورک ویزا اور میری ورک پرمٹ پوری ہو جائے گی تو مجھے یہ ملک چھوڑنا پڑے گا، کمپنی مجھے یہاں سے نکال دے گی، تو میں نے اپنے پاس جو کچھ تنخواہ کے راستے سے بچا بچا کر جمع کیا ہے، میرے وطن میں جانے کے بعد ایک اچھی موڑی بن جائے گی، ایک اچھا سرمایہ بن جائے گا، تو میں کچھ اپنی ملکت لے سکوں گا، اپنا کاروبار کر سکوں گا، زمین خرید کر کھیتی کر سکوں گا، اپنی بچی کے جہیز کا سامان کر سکوں گا، بیٹے کے ولیمے کا سامان کر سکوں گا، میں اپنے ماں باپ کی دوا دارو کر سکوں، یہ ساری چیزیں اس کے نقش ذہن میں. وہ اپنا ایک پیسہ ضائع نہیں کرتا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس دنیا میں میرا آپ کا قیام عارضی رکھا ہے، اور جنت اور آخرت ہمارا قیام کیسا ہے بولو؟ ہمیشہ کا ہے. جو جان، جو مال، جو صلاحیت، جو استعداد، جو زندگی کا حصہ، جو جوانی کا حصہ اللہ کے دین کے نام پر لگ گیا، وہ اللہ کے یہاں ہمارے کھاتے میں جمع ہو گیا. کیا ہو گیا بولو؟ جمع. چار مہینے چلے گئے، 120 دن، 120 دن کی نمازیں، 120 دن کی تعلیم کے حلقے، 120 دن کی گشت، 120 دن کی ملاقاتیں، 120 دن کی تہجد، 120 دن کی چاش اوابین اور اشراق، 120 دن کی تلاوت، 120 دن کی تسبیحات، 120 دن بستی میں چلت پھرت کر کے، محنت کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانے کی محنت، یہ سارا کا سارا کیا ہو گیا بولو؟ میری آخرت میں جمع ہو گیا. اچھا، اس کو کوئی مجھ سے چھین سکتا ہے؟ اس سے میں مر جاؤں تو میرے پاس جتنا پیسہ ہے، میرے کپڑے بھی اتار لیں گے، میری گھڑی بھی اتار لیں گے، میرے موزے بھی اتار لیں گے، ٹوپی بھی اتار لیں گے، اور میں نے اندر پہنا باہر پہنا سب نکال لیں گے، میرے نام کا بینک بیلنس ہے وہ بھی میری اولاد کیا کرے گی؟ اپنے نام پر منتقل کر دے گی. میرے نام کا مکان ہے، میرے نام کی دکان ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ کارپوریشن میں جا کر اپنے نام پر کر دیں گے، وہ سب لے لیں گے. لیکن میرے پاس جو نیکی ہے وہ اپنے نام پر کر سکتے ہیں؟ بولو، یہ کام مجھے کام دے گی؟ جہاں آدمی نیکی کا محتاج ہوگا. روایات میں ہے، ایک آدمی کے نیکیوں کو برائیوں کو تولا گیا، اور اس کی برائی کا پلڑا تھوڑا سا چک گیا. اللہ میاں کہے گا، ایک نیکی لیا، تیری جنت کا فیصلہ کر دوں گا. کیا کر دوں گا؟ جنت کا فیصلہ، ہمیشہ کی جنت کا فیصلہ. اب سوچو، اندازہ کرو، وہ نیکی کے لیے بیوی کے پاس جائے گا. کس کے پاس جائے گا؟ ہاں، اولاد کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، سب ہاتھ ادھر کر دیں گے، سب ہاتھ اونچے کر دیں گے کہ نہیں بھائی، ہم تجھے نہیں دے سکتے، ہمارا خود کا مسئلہ ٹیڑھا ہو چکا ہے، تجھے کہاں سے دیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ جتنا اجر ہے، یہ جتنی محنت ہے، یہ کس کے خاتے میں جا رہی؟ ہمارے خاتے میں جا رہی. ایک آدمی چار مہینے ہر سال لگاتا ہے، ہر سال 120 دن کی محنت، جان مال کا لگنا، کھپنا تھکنا، اللہ کے لیے کھپنا تھکنا، یہ سب اس کی آخرت کا کوشا ہے. اچھا، یہ تو لگ رہا ہے، کھپ رہا ہے، اس کا تو مل رہا ہے. جس علاقے میں ہم چلے گئے اور وہاں جا کر ہم نے محنت کی، وہاں جا کر کیا کی بولو؟ محنت کی، اور وہاں بہت سے اللہ کے بندوں کو کیا کر دیا؟ محنت کر کے انہیں مسجد والا بنا دیا. کیا کر دیا بولو؟ جماعت جا کر محنت کرتی ہے نا، مسجدیں بیٹھی تھوڑی رہتی ہیں. جماعت تو جائے گی، گشت کرے گی، ملاقاتیں کرے گی، لوگوں کی منت و سماجت کرے گی، خوشامد کرے گی، بھائی صاحب کہے گی، بھائی صاحب مسجد میں آ جائیں، بھائی صاحب نماز پڑھ لیں، بھائی صاحب تعلیم میں بیٹھ جائیں، بھائی صاحب آپ 3 دن چلے جائیں،
لیکن جماعت تو یہی کرتی ہیں, ہمیں تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ جماعت جا کر محنت کرے گی, منت و سماجت کرے گی, تو اس علاقے میں چار مہینے میں جتنا دین زندہ ہوگا, جتنے افراد, جتنے جوان, جتنے لوگ توبہ کریں گے اور توبہ کر کے زندگیوں کا رخ صحیح کر لیں گے, اور ایک آدمی کی زندگی کے رخ کا صحیح ہو جانا گویا اس کی قیامت تک کی نسل کا سدھر جانا ہے. ایک آدمی سدھر گیا تو وہ کیا کرے گا, اپنی بیوی کو بھی سدھارے گا, اپنے بچوں کو بھی سدھارے گا, وہ اپنے گھر میں ماحول بھی کیسا بنائے گا, دینداری کا, ایمان کا, نماز کا, تلاوت کا, ذکر کا, اچھے اخلاق کا, پاکیزہ دینداری کا ماحول بنائے گا. کیوں؟ اس کے فکر میں ایک بات دین دماغ میں اتر چکی ہے کہ دین میں میری راحت ہے. جماعت کے ساتھیوں نے محنت کر کے اس کو سمجھایا ہے, یہ تین دن لگا کر آیا, یہ ماشاءاللہ اشرا لگا کر آیا, یہ چلا لگا کر آیا, اب اس کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ آج تک کی غفلت سے اللہ میری توبہ, اب میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا, اب میں کبھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑوں گا, اب میں کبھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑوں گا, اب کبھی بے ایمانی کی زندگی نہیں گزاروں گا, اب ایمانداری اور امانت داری کی زندگی کروں گا, حلال پاک کمائی کروں گا, اور میں اپنے گھر کے اندر بھی میرے بی بچوں میں محنت کر کے ان کے اندر دین کا پاک ماحول بناؤں گا. ایک بات کا تہیا کر کے جب گھر میں آ کر اس نے اس کی محنت کی, علاقے میں اپنے یہاں چل پھر کر محنت کی, اللہ نے میرے بھائیوں اس کی نسل کو سدھار دیا. یہ سارا کے سارا کس کے کھاتے میں جائے گا بولو, ارے بولو کس کے کھاتے میں, جماعت کے کھاتے, ہمارے مرزا پور کی جماعت کے, دھار کی جماعت کے, جابوا کی جماعت کے, ہے نا, بدناور کی جماعت کے, علاقے میں محنت کر کے آئی, 12 ساتھی محنت کر گئے. اچھا 12 آدمی نے کتنا خرچہ کیا, بھائی ایک آدمی نے 5-7 ہزار روپے خرچ کی, کیا لگا ان کا, 4 مہینے لگ گئے, تھوڑی سردی لگ گئی, تھوڑی گرمی لگ گئی, تھوڑی گھر کی روٹی چھوٹ گئی, گھر کے چاول چھوٹ گئے, ارے مزے کا سالن گھر میں کھاتے وہ تھوڑے دن کے لیے چھوٹ گیا, جتنا مجاہدہ کیا تھا وہ سارا مجاہدہ گھر آنے پر کیا ہو جائے گا بولو, ختم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, ہو جائے گی نہیں, ہے نا, ہمیشہ تو کوئی جماعت میں رہتا نہیں, 4 مہینے پورے کرتے ہیں, جتنا مجاہدہ کیا سارا مجاہدہ ختم, لیکن جو محنت کر کر آئے ہیں اور وہاں دین ایمان اور اس کی محنت کو جتنا زندہ کر کے آئے ہیں وہ کس کے کھاتے میں ہے, یہ ان 12 نکلنے والوں کے کھاتے میں. ہماری ایک جماعت, میں اکثر کارگزاری سناتا ہوں, میری مسجد کی جماعت 2015 میں, آج سے 5 سال پہلے رمضان کے اندر, 15 رمضان کو ایک ہمارے یہ بہار جھارکھنڈ کے علاقے میں گئی, 17 رمضان کو 2 دن کے ٹرین کی مسافری کر کے جماعت پہنچ گئی, ہے نا, رمضان کے دن سے وہاں کے ساتھیوں نے کہا عید تک یہاں رک جاؤ, جماعت نے عید وہاں کر لی شہر کے اندر, پھر جماعت نے ڈیمانڈ کی بھائی ہمیں شہر میں نہیں رہنا ہے, ہم ویسے بھی شہر کے رہنے والے ہیں, آپ ہمیں قصبوں کا, دیہاتوں کا رخ دے دیا, تو انہوں نے ایسا رخ دے دیا دیہاتوں کا, جماعتوں کو, جن دیہاتوں میں 1 مسجد ہے, 150 گھر ہے, 200 گھر ہے, 300 گھر ہے مسلمانوں کے, رمضان کے بعد جماعت نے چلنا شروع کیا, 3-4 دن جماعت مسجد کے اندر رہتی, محنت کر کے وہاں سے 1 جماعت 2 جماعت 3 جماعت 3 دن کی نکالتی, سب جوان لڑکے تھے, اپنے جیسے لڑکوں پر محنت کر کے دوستی یاری کر کے ان کی 3-3 دن کی جماعتیں بناتے اور ان کو جماعت میں بھیجتے, جو نہیں جا سکتے تھے ان کو اپنے ساتھ تالی میں بٹھاتے, گش میں رکھتے, اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیتے, دوستی بھائی بندی کر کے, یاری کر کے اپنے ساتھ محنت میں شریک کر لیتے, کیا نتیجہ ہوتا, 3-4 دن کے بعد اس گاؤں کے بڑے بوڑھے یوں کہتے ہیں لگتا ہے بھائی پھر سے رمضان واپس آ گیا, پھر نماز, پھر مسجد نمازیوں سے پڑ گئی, کیا ہوا, نمازیوں سے مسجد جیسے رمضان میں بھر جاتی ہیں پھر بھر گئی, جوانوں کے سر پر ٹوپیاں آ گئی, گلی کچوں میں موبائل پر گانے میوزک سنتے ہوئے ایک لڑکے گزرتے تھے, ان لڑکوں کے موبائل کے اندر اب کیا آنے لگے کہ ماں تاریخ جمیل صاحب کے بیانات اور جنید جمشید کی نعتوں کو وہ سننے لگے, سرب اب نماز کا فجر کی نماز میں پوری مسجد اندر کی بھر جاتی, چھت پر صفے لگ جاتی, کہاں لگ جاتی, چھت پر, گاؤں کے ایسے گاؤں کہ اس گاؤں میں اس علاقے میں 2-3 گاؤں کے بیچ میں ایک سرپنچ, ایک پنچایت, گاؤں کا ایک چودھری, 3-4 گاؤں کا, اور اس کا اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اس نے ہفتے کا ہر ایک دن, ہفتے کے مختلف دن اس نے مختلف گاؤں کے لیے طے کی ہوتی کہ گاؤں میں کوئی جھگڑا جھگڑا ہوا ہو تو بیٹھ کے اس کا سمادھان کروا دے, سلح شانتی کروا دے, تو وہ سرپنچ گاؤں کے اندر آتا اور پوچھتا بھائی کوئی جھگڑا, کوئی لڑائی, کوئی ماتھا کوٹ کی کوئی بات, تو پورے پورے گاؤں کے اندر کہیں کوئی لڑائی نہیں ہے, پورے گاؤں کے اندر کیا ہے بولو, سلح شانتی ہے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, سب میل محبت سے رہ رہے, مل جل کر رہ رہے, کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں. اچھا اس علاقے میں دارو فری ہے, شراب فری ہے, تو وہاں شراب کی دکانیں تھیں, तो शराब के ठेकेदार कहने लगे यार धंधे में एकदम बंदा आ गया। क्या कहते धंधे में एकदम घराकी कम हो गई, एकदम बंदी हो गई। कौन पीता था दारू बोलो, कौन पीता था? अब तीन दिन चार दिन जमात माशाल्लाह पूरे गांव के माहौल में एक जबरदस्त इंकलाब, जमात मेहनत कर रही है। अच्छा आप मुझे बताओ जिस घर का जवान बेटा शराब पीता हो मां बाप पर क्या बीतती होगी? आपके घर का जवान बच्चा रात को शराब पीकर आवे, आपका भाई रात को शराब पीकर घर में आवे तो आप पर क्या बीतेगी? बर्दाश्त कर सकते आप हैं? कोई आदमी इसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है और कह भी नहीं सकता। घर की इज्जत का सवाल है, घर की इज्जत का सवाल है। खुद कह नहीं सकता, किसी को बदला नहीं सकता है, अंदर से पी नहीं सकता है। आज माँ बाप कड़वे घोंट पी के हाँ गम में घुट घुट कर जिंदगी गुजार रहे थे। अब वो जवानों ने तीन दिन लगाए माशाल्लाह तोबा कर ली। क्या कर ली? तोबा कर ली। अच्छे बन गए, नमाजी बन गए, काम धंधे वाले बन गए। हाँ गलत किस्म की और गंदी आदतें इन्होंने छोड़ दी। सच बताओ उस माँ बाप के कलेजे से दुआ निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अरे बोलो, उसके माँ की दुआएं मिलेगी कि नहीं मिलेगी? किसको मिलेगी? ये हमारी बदनावर की मिर्जापुर की 12 आदमी की जमात के युग उसको मिलेगी? ये जो जमात के लिए ये जमात वो कहेगी, माँ कहेगी अल्लाह इन जमात वालों का भला कर दे। तो बोलो तुमको दुआएं चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो, अरे भाइयों तुमको लोगों को ऐसी माओ की कलेजे की दुआएं चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये घर बैठे थोड़ी मिलेगी दुआएं? बोलो ये घर बैठे मिलेगी? वो तो इलाकों में चलोगे फिरोगे मेहनत करोगे और लोगों की जिंदगियों पर मेहनत करके इनके रूप को सुधारने के लिए अपना जानमाल वक्त लगाओगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसों की दुआएं देगा, अल्लाह हमें ऐसों की दुआएं देगा और अल्लाह ताला इन दुआओं से हमारे न जाने कितने बेड़ों को पार कर देगा। नहीं जब मोमिन मोमिन के लिए गायबाना तौर पर दुआ करता है तो दुआ कबूल हो जाती है। क्या हो जाती है? दुआ कबूल हो जाती है। जमात तो काम करके इलाके में 4 महीने से वापस आ गई, 4 महीने काम करके वो तो उन बस्तियों का नाम भी भूल गई, किनकी मुलाकात की थी वहां के जिम्मेदार कौन इनके नाम भी भूल गए, शक्ल सूरत भी दिमाग से निकल गई। लेकिन जितना उस इलाके में दीन जिंदा हुआ और कयामत तक जिंदा होता रहेगा वो सारा का सारा खाता किस में जाएगा? अद्दालु अलल खैर अलल खैर कफाइली। अल्लाह का जाब्ता है कि आदमी भलाई को जिंदा करने की मेहनत में लगेगा तो वो जितनी भलाई और खैर इलाकों के अंदर जिंदा होगी वो सारी की सारी खैर और सारी की सारी भलाई किसके खाते में है? निकलने वालों के खाते में है। किसके खाते में? अच्छा हम नमाज पढ़ते हैं, कैसी पढ़ते हैं हम जानते हैं, कबूल हो ना हुई किसको पता है? हमारे अमाल किस ठिकाने के हैं? लेकिन मेहनत करके हमने जिनको अमाल वाला बना दिया अल्लाह इनकी मकबूल नमाजों का सवाब हमको देगा, मकबूल इबादतों का सवाब देगा। खुदा इनकी जितनी नेकियां होगी जान माल से वो मकबूल नेकियों का सवाब अल्लाह ताला हमारे खाते में इनकी मौत तक लगा लिखता रहेगा। और इन्होंने भी क्या है अपनी जिंदगी के अंदर जितनों को मेहनत करके काम के अंदर लगा दिया मेरे दोस्तों भाई वो सारा का सारा खाता जैसे इनको अजर मिलेगा अल्लाह ताला किसको देगा? हम निकलने वालों को भी इसका अल्लाह पूरा अजर देगा। मेरे भाइयों हम तो वो लोग हैं कि जो सिर्फ दाई नहीं है, बकौल हजरत मुअब्बदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के ये उम्मत दाई नहीं, ये उम्मत तो दाई घर है। ये उम्मत सिर्फ दाई नहीं बल्कि क्या है? दाई घर है कि अपने पीछे मेहनत करके हजारों दाइयों को तैयार करेगी। क्या करेगी? हजारों दाइयों को तैयार करे, हाँ मेहनत करके लोगों को खड़ा करे। तो मेरे दोस्तों अल्लाह ने एक बहुत जबरदस्त मौका दे रखा है, ये जिंदगी कीमती है, थोड़ी सी है, ये कमाने के लिए है। क्या कमाना है बोलो? क्या कमाना है? खेत कमाएंगे, जमीनें कमा लेंगे, हैं मकान बनवा लेंगे, दुकानें बनवा लेंगे, हैं छोकरे छोकरियों की शादियां करवा के सामाजिक जिम्मेदारी पूरी करके हाज तो क्या हो गया? क्या भाई सब जवाबदारियां पूरी हो गई? अरे तेरे छोकरे नमाजी नहीं है, क्या जवाबदारी तेरी पूरी हुई? तेरे घर में आने वाली बहुओं की जिंदगियों में नमाज नहीं है, आदमी अपने बच्चों की कमाने पर खुश हो जाता है कि 500 कमाता है, 1000 कमाता है, ये 5 बीघे संभालता है, ये 10 बीघे संभालता है, ये 2 दुकान संभालता है, ये बराबर में स्टोर संभालता है, ये इंदौर के अंदर बड़ी फैक्ट्री संभालता है, खुश हो जाता है। अरे इनकी जिंदगी में नमाज नहीं है, ये कोई खुश होने की चीज है? क्यों इनकी जिंदगी में नमाज? हमने फिक्र इसी की है कि इनकी दुनिया बन जाओ। क्या बन जाए बोलो? इनकी दुनिया। हमने इनकी आखिरत बनाने की फिक्र ही नहीं की, दिन बनाने की फिक्र ही नहीं की। हालांकि माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? अपने औलाद को दीन बनाने की। क्या बनाने की बोलो? इनका दीन बनावे, इनको दीन की मेहनत में लगावे, इन्हें 4 महीने अल्लाह के रास्ते में भेजे ताकि इनको इस बात का एहसास हो मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं हुजूर का उम्मती हूं, मेरे जिम्मे अल्लाह का बंदा होने के नाते से अल्लाह के हुक्मों पर चलना, उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलना, ये मेरी जिम्मेदारी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, इस उम्मती होने के नाते से खुदा ने जो जान माल असबाब मुझे दे रखे हैं ये मेरे अपने नहीं है, ये अल्लाह ने मुझे अमानत के तौर पर दे रखे हैं, इसमें खुदा की मखलूक का हिस्सा है, मैं इन असबाब को लेकर दुनिया में मुल्कों में चलू फिरू, मेहनत करूं अल्लाह के बंदों पर, मेहनत करूं इन्हें दीन पर आमदा करूं, मेहनत करूं ताकि इनकी जिंदगियां गफलत से निकले, मेहनत करूं ताकि इलाकों में अल्लाह का दीन जिंदा हो जावे, और मेरी जान माल और मेरा वक्त मेरी सलाहियत इस्तेदाद जो मुझे अल्लाह ने दे रखी है ये सब ठिकाने पर लगे। ये समझाना किसकी जिम्मेदारी है? घर के हर बाप की जिम्मेदारी। हाँ हम ये समझते बच्चे खाते पीते कमाते हो गए, भाई ये सिक्के की एक बाजू है, ये सिक्के की क्या बोलो? और सिक्का क्या होता है? जिसके दोनों जानिब छाप हो, एक जानिब छाप हो दूसरी जानिब छाप ना हो तो उसको कोई सिक्का कहेगा? बनावटी कहेगा। इसमें कोई शक नहीं, आदमी फिक्र करे कि उसकी औलाद खाती पीती कमाती हो जावे, हम इससे इनकार भी कर रहे हैं, लेकिन इसी को बस समझ लेना और इसी पर हाश कह देना, हाँ और इसी को सब कुछ कर समझ कर फिर अपनी औलाद के बारे में दीन और दीन की मेहनत की फिक्र न करना, ये मेरे भाइयों हमारी क्या है? बहुत बड़ी कोताही है। हमारी औलादे पलटेगी दीन और दीन की मेहनत की बुनियाद पर। हाँ इस्लाम की तारीख इस पर शाहिद है। उमर इब्न अब्दुल अजीज के कई बेटे थे, मरने के वक्त आपने अपने औलाद के लिए चंद दिरहम छोड़े। आपके साथी रजा इब्न हयात ने कहा आपसे, हजरत आपसे पहले के बादशाह ने अपनी औलाद के लिए खूब दुनिया छोड़ी, आपने इनके लिए दुनिया नहीं छोड़ी? आपने फरमाया कि भाई मैंने दूसरों की दुनिया इनको दी नहीं है, इनका जो हक था वो मारा नहीं है, अगर मेरे मरने के बाद मेरी औलाद दीनदार है, क्या फरमाया बोलो? दीनदार है तो अल्लाह इनका कफील है, अल्लाह इनका वाली है, इसका वादा है कि वो दीनदारों को जाये होने नहीं देगा, और अगर मेरे मरने के बाद मेरी औलाद दीनदार नहीं है, नेक नमाजी नहीं है, तो मुझे ऐसी बेदीन औलाद की पड़ी भी नहीं है, ऐसी बेदीन औलाद की पड़ी भी नहीं है। चुनाचा आपका इंतकाल हो गया, आपके इंतकाल के बाद हिशाम बिन अब्दुल मलिक खलीफा बना, आलम इस्लाम का बादशाह बना, ये मरा इसने अपनी औलाद के लिए बहुत सारी दुनिया छोड़ी, इसने क्या छोड़ी बोलो? दुनिया छोड़ के मरा अपनी औलाद के लिए, लाखों करोड़ों छोड़ के मरा, लेकिन दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है, एक जमाना ऐसा आया कि जब अल्लाह के दिन की मेहनत का कोई तकाजा आता, माल का चंदे का कोई तकाजा, माली तकाजा होता, तो उमर इब्न अब्दुल अजीज की औलाद खड़े होकर मजमे में कहते, इतने हजार हमारी तरफ से, इतने हजार हमारी तरफ से, इतनी सवारियां इतनी तरफ से, इतना सामान हमारी तरफ से दे रहे हैं, जिनके बाप ने चंद दिन हम छोड़े थे, लेकिन वारसे में क्या छोड़ा था बोलो? घरों में औलाद की जिंदगी में दीन छोड़े। हाँ और हिशाम बिन अब्दुल मलिक जिसने अपनी औलाद के लिए लाखों करोड़ों छोड़ के मरा था, तारीख और इतिहास हिस्ट्री में ये बातें लिखी हुई है कि हिशाम की औलाद दमिश्क की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर भीख मांगती थी और यूं कहती थी कि ये जामा मस्जिद ये जुमा मस्जिद मेरे दादा ने बनाई है, तुम हमें अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो, ये मस्जिद हमारे दादा ने बनाई है, तुम हमें अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो। मेरे भाइयों हर आदमी को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, हर एक आदमी अपनी औलाद के फ्यूचर और मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद होता है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चों को दिन की मेहनत छुड़वा कर और दिन की मेहनत के बारे में कोताही बरता कर हम आप मेरे भाइयों इनको काम धंधे पर लगाकर मुतमईन हो जावे। ये कौन सी समझदारी है? ये औलाद के साथ हमदर्दी नहीं है, ये अपनी औलाद के साथ जुल्म सितम है। ये औलाद को छुरा मारना है, नादानी है ये हमारी। बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, बाप के पेशानी पर कोई बल न पड़े, बच्चे के हाथ में कुरान नहीं कभी, बच्चे के हाथ में तस्बीह नहीं, बीवी मुसल्ले पर नहीं, बेटियां बहुए घर में मुसल्ले पर नहीं, इनकी जिंदगियों में अल्लाह के अहकाम नहीं, ये कौन सी मुसलमानी है? ये कौन सा अल्लाह से ताल्लुक की बात है? मेरे भाइयों, ये मेहनत से ये बात चाही जाती है कि जो फिक्र दुनिया के बारे में मेरा आपका बना हुआ है इसमें चले 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 यहां तक कि हमारी सोच अंदर की बदल जाती है और सोच बदल कर मैं अपनी आखिरत, अपने बच्चों की आखिरत क्या करें बोलो। हाँ, जब आदमी मेहनत करे अपने पर, अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर, बेटियों पर, बहुओं पर, माँ बाप पर और मेहनत करके इनको दीन के रास्ते पर लगा देगा तो रिवाजात में यह है भले इनकी नेकियां कुछ कम रह गई, अपने मुकाबले में इनकी नेकियां क्या रह गई बोलो, कम रह गई, लेकिन आखिरत में अल्लाह सबको जमा कर देगा। आयात में है कि जन्नती सारे हिसाब किताब को निमटा कर जब जन्नत की तरफ पहुंचेगा तो फरिश्तों से कहेगा भाई मेरे भी बच्चे कहाँ हैं? अब तक कोई याद नहीं आ रहा था, क्यों? टेंशन था कि मैं बचता के नहीं बचता, मैं निकलता के नहीं निकलता यहां से, अब निकल गया। अब ये सबसे पहले किसको याद करेगा? अपने भी बच्चों को याद करेगा। फरिश्तों से कहा इनको लाओ, ये नहीं आने को तो मैं जन्नत में नहीं जाने का, इनको लाओ। फरिश्ते कहेंगे भाई इनके इतने आमाल नहीं है, वो तुम्हारे दर्जे पर नहीं पहुंच सके, वो जिद करेगा जन्नत के नहीं जाने का। मैं तो फरिश्ते अल्लाह मियां से अर्ज करेंगे ये ना कहता है, ये क्या कहता है नहीं जाने का मैं, या क्या डिमांड है इसके भी बच्चे ला दो इसके भी का। इनके दर्जा नीचे के होंगे तो भी हमारा दर्जा ऊपर का होने के बावजूद अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू उस दिन करम का मामला फरमाएगा और अल्लाह ताला उन्हें हमारे दर्जे की जन्नत अता फरमा देगा। क्यों? दुनिया में बाप ने मेहनत की थी, फिक्र की थी, अपने बस की पूरी मेहनत की थी। तो मेरे भाइयों, ये तो करने की चीज है। हाँ, दुनिया इसीलिए दे हम आप हैं, अल्लाह ने जो कुछ दे रखा है इसी के लिए दे रखा है। ये खा पी के हग मुत के मर जाने के वास्ते थोड़ा दे रखा है, खा लो पी लो हग लो मुत लो बच्चे पैदा कर लो शादी करके मर जाओ। अरे तो कुत्ते बिल्लियां करती हैं, गाय भैंसे करती हैं, हम तो इंसान है, मुसलमान है, हुजूर की उम्मत है, हम थोड़ी ये सब करेंगे। हमें तो अल्लाह ने बहुत बड़ा काम दे रखा है खत्म नबूवत के सच्चे में कि जिसकी मेहनत से हम भी दीनदार बने, लोग भी दीनदार बने, समझे ना? हमारी जिंदगियों में दीन आवे, हमारे घरों में दीन आवे, इलाकों में दीन आवे, इसके लिए कुर्बानी शर्त है। इसके लिए क्या शर्त है बोलो? घर छोड़ना शर्त है, मिर्जापुर छोड़ना शर्त है, बजनावर छोड़ना शर्त है, जाबा छोड़ना शर्त है, धार छोड़ना शर्त है, हाँ बाकानेर छोड़ना शर्त है इसके लिए। हाँ, मैं ये चाहूं कि मेरा कूद न छूटे, मेरी चवन्नी न हो, दीनदार बन जाऊं, ऐसा हो सकता है? एक आदमी शेर का टैटू बनाने के लिए आदमी के पास गया, ये टैटू बनाने वाले के पास, कि शेर बना दे मेरी कमर पर। उसने कपड़े उतारे, उसने सुई ली शेर बनाने के लिए और चुभोई उसको, जैसे चुभोई वो चिल्लाने लगे क्या कर रहा है, शेर की दुम बना रहा हूं, दुम मत बना, बना दुम बगैर का बना चाहिए। फिर इसने फिर चुभाई, वो फिर चिल्ला रहा क्या कर रहा है, अरे शेर के पैर बना रहा हूं, अरे पैर बेल नहीं चाहिए, दूसरा कुछ बना चाहिए। फिर इसने सूचू बन, फिर ये चिल्लाया क्या कर रहा है, तो शेर का मुंह बना रहा हूं, कि मुंह में बना कुछ और बना। तो वो सुई वाला बनाने वाले कह रहा है बेवकूफ गधे कहीं के, ऐसा शेर देखा है जिसके दुम न हो, पैर न हो, सर न हो, आधा बड़ा शेर बनाने वाला। हमारा मसला ये है कि नहीं, हम सबको हिदायत चाहिए, दीनदारी चाहिए, है कि नहीं? इलाकों के अंदर दीनदारी चाहिए, राहतें चाहिए, इज्जतें चाहिए, आफियत चाहिए, बरकत चाहिए, रहमत चाहिए। लेकिन इस रहमत के लिए कहें भाई चार महीने चलो, तक दुकान नहीं छूटेगी, घर नहीं छूटेगा, बच्चे नहीं छूटेंगे, गांव नहीं छोड़ेंगे, शहर नहीं छोड़ेंगे, जापा नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई ये नहीं छोड़ेंगे तो मिलेगा कैसे? जब नहीं छोड़ोगे तो ये मिलेगा कैसे? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, दुनिया का पुराना दस्तूर है। कुछ पाना हो तो क्या करो बोलो? कुछ खोलो, यू दो यू लो,
اللہ نے اس کام کو تو تجارت کہا, اللہ دلکم علی تجارت, کہ تمہیں ایسا بزنس ایسا کاروبار بتاؤں کہ جس کے اندر کیا ہے, ہاں تو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے, کہ دین کی محنت کے نتیجے میں جب خدا جہنم کی تکلیفوں سے بچائے گا تو کیا دنیا کی تکلیفوں سے نہیں بچائے گا؟ آدمی دین کی محنت کرے گا تو کیا دنیا کے اندر اجڑ جائے گا؟ اس کے بیوی بچے بھوکے مریں گے, اس کا کاروبار کھیت برباد ہو جائے گا؟ ارے میرے بھائیوں کبھی ہو ہی نہیں سکتا یہ چیز, یہ ناممکن ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ دے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ بندہ لیتے لیتے تھک جائے گا. اللہ اتنا دے گا کہ بندہ لیتے لیتے تھک جائے گا, اللہ ایسا دے گا. ہاں تو میرے بھائیو اس کے لیے قربانی, قدم اٹھانا, چلنا, چار چار مہینے نکلنا ضروری ہے. تو اس کے لیے سب تیار ہو, ارے سب تیار ہو, ارے پیچھے والوں سب تیار ہو. اب بتاؤ نقد چار مہینے کے لیے ہمارے اجتماع سے کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر, ماشاء اللہ, کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو. نقد چار مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ.